साढ़े दस बजे
मजलिस होगी इंशाल्लाह।
अच्छा
अभी नजर उसके बाद थोड़ा सा अगर हम भी मौका हुआ।
अच्छा, आपके ऊपर जितनी आप तवज्जो डालेंगे मजमून वैसा आएगा।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعاؤں برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی میرے شیخ اور مرشد کو 130 سال کی عمر، صحت، عافیت، خدمات دینیہ اور شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اپنے شیخ اور مرشد کے لیے دعا کرنا، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے لیے دعا کرنا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ رب جیسے میرے صغر سن چھوٹے پن میں اور جب میں بسہ تھا تو میرے ماں باپ نے ہم پر رحم فرمایا ایسا ہی تربیت میں، تو ایسا ہی آپ بھی ان پر رحم فرمائیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے شیخ جو کہ روحانی مربی ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا یہ مرید کے ذمے اس کے احسانات کی وجہ سے ہے۔ اور لائق مرید اور لائق شاگرد وہ ہے جو اپنے روحانی باپ کو بھولے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع کو دیکھ کر یا عزتوں کو دیکھ کر دو جوتی اٹھانے والے مل گئے، دو آدمیوں میں انہوں نے ہاتھ چوم لیا تو اس نے کہا کہ بس اب تو میں کمال کو پہنچ گیا۔ یہ مرید کی نالائقی کی ابتدا کا اور حماقت کی ابتدا کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو شیخ اور مرشد سے اور اپنے پیر سے، اپنے مربی سے بے نیاز سمجھتا ہے اپنے کو۔ بس پھر اس کا وہی حال ہے کہ اگر بجلی کا تار لگا ہوا ہو اور بجلی کا تار گھر میں جو تار آ رہا ہے کھمبے سے، پول سے، اس نے تار کو، اب گھر میں اے سی چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تو اس نے کہا اب ہمیں تار کی کیا ضرورت ہے، اب ہم تو سب کچھ آ گیا، بجلی آ رہی ہے، باہر کنیکشن کاٹ دیا یا بل ادا نہیں کیا جناب، ہاں چلو تار لگا ہوا ہے، کیونکہ تار جو تعلق کا تار ہے وہ تو لگ گیا لیکن شکریہ کا بل ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا، لائٹ نہیں جلے گی، ڈی فریزر میں جو قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا اور سڑ جائے گا۔ اور قربانی کا گوشت کتنے زمانے کے لیے؟ ایک سال کے لیے رکھا ہوا ہے کہ سال بھر قربانی کا گوشت کھاؤں گا، وہ گوشت سڑ جائے گا۔ ایسے ہی وہ مرید اور وہ شاگرد جو اپنے شیخ کو بھول جائے تو ظاہر تو ہوگا قربانی کے گوشت کی شکل ہوگی، جمع ہوا ہوگا، لیکن وہ سڑا ہوا نکلے گا اندر سے۔ جب امت اس کو دیکھے گی تو پتہ چلا کہ اس کی تقریروں کے پیچھے چندہ ہوگا اور اس کے درد دل کے پیچھے دولت ہوگی اور دو لات ہوگی اور لات و منات ہوں گے، یعنی غیر اللہ ہوگا، وہ عزت چاہے گا، اس کی آہوں میں اثر نہیں ہوگا۔ क्योंकि मौला मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि आह का असर यह है, आह का असर यह है, घर आहे मन असरे दाश्ते। मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं घर आहे मन असरे दाश्ते, अगर मेरी आह के अंदर असर होगा तो यार मन दरकुए मन, मेरा यार मेरी गली में, यार मन दरकुए मन गुजरे दाश्ते, मेरी मेरा यार मेरा अल्लाह मेरी गली से जरूर गुजरेगा। और हजरत डॉक्टर अब्दुल अहद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के दिल को अपनी तजल्ली से मुतजल्ली फरमाता है और अपने अनवारात से मुनव्वर फरमाता है तो उसके क्या आलम होता है, वो खालिके दो जहां और खालिके आलम और खालिके आलमीन, रब्बुल आलमीन है ना, तो आलमों का पैदा करने वाले का ये आलम होता है कि मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हजरत डॉक्टर अब्दुल अहद साहब हकीम उल उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा वो फरमाते हैं जब कभी वो इधर से गुजरे हैं कितने आलम नजर से गुजरे हैं, जब कभी वो इधर से गुजरे हैं कितने आलम नजर से गुजरे हैं। लेकिन जो लायक मुरीद होता है जब वो इन तजल्लियात को और इन नवाजिशात को और इन अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानियों को देखता है तो उतना जितना ज्यादा इनायतें देखता है उतना ज्यादा अपने शेख और मुर्शिद पर फिदा और कुर्बान हो जाता है। पैर धो धो कर पीना उसको अपनी सादत समझता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके उस्ताद भी हैं, क्या फरमाया था, कहा था उस्ताद से क्या आगा कि आप इजाजत दीजिए मैं आपके पांव को धोकर पीऊं। आह ये मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद ने फरमाया, मेरे शेख ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत देना चाहता है उस जमाने के किसी वली की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है, यहां तक कि वो उसके पास आता जाता है, आना जाना शुरू करता है और इस आने जाने का समरा और फल, फल फल क्या मिलता है, फल भी मिलता है फूल भी मिलता है, फल भी मिलता है फूल भी मिलता है और अप्रैल फूल से महफूज हो जाता है। वो अप्रैल फूल मनाते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, अप्रैल फूल फूल तो पाता है खुशबू वाले फूल, लेकिन अप्रैल फूल से नजात पाता है यानी गैरुल्लाह से, और क्या मिलता है उसको, मेरे शेख और मुर्शिद बहुत ही मोहब्बत से और दर्द से ये अशार फरमाया करते हैं और पढ़ा करते हैं, गर तुम यूं ही आते जाते रहोगे, गर तुम यूं ही आते जाते रहोगे, मोहब्बत का फल तुम पाते रहोगे, मोहब्बत का फल तुम पाते रहोगे, और मोहब्बत का फल जब वो पाने लगे, मोहब्बत का फल जब वो पाने लगे क्यों मुझे छोड़कर फिर वो जाने लगे। अदा शेख पर फिदा और कुर्बान होता है मेरे दोस्तों, ये मुरीद की फरमा बरदारी और लियाकत और शराफते शराफते शराफत और हयाए बंदगी और शराफते शराफते तलम्मुज शराफते निस्बत भी है, ये शराफते निस्बत भी और शराफते मोहब्बत भी है कि वो शेख पर फिदा और कुर्बान रहे। हाँ ये जरूर है शेख देख ले सीधे रास्ते पर हो, अपने बुजुर्गों के रास्ते के ऊपर हो, ये जरूरी है, शेख वो ना हो जो सिर्फ मेल ठोकता हो, ऐसा ना हो, शेख और मुर्शिद कौन हो कि वो भी गैरुल्लाह से बचता भी हो बचाता भी हो, बचना और बचाना जागना और जगाना भागना और भगाना ये काम भी जानता हो, क्योंकि भागता है भगाना नहीं जानता, इसका मतलब ये शेख कामिल नहीं है, ये वो मर्द है जो जिसकी मर्दानगी तो है लेकिन उसकी मर्दानगी मुतादी नहीं है, लिहाजा ये खुद मर्द तो है लेकिन क्या है ये साहिब औलाद नहीं बन सकता, लिहाजा शेख के जिम्मे जागता भी हो जगाता भी हो यानी उसकी निस्बत लाजिमा के साथ मुतादी भी होनी चाहिए, अगर उसकी निस्बत मुतादी नहीं है तो फिर क्या नतीजा होगा कि मुरीद रहेगा वो खुद साहिब निस्बत होगा शेख लेकिन किसी को साहिब निस्बत बना नहीं सकेगा, क्योंकि मेरे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं चिराग की किस्म होती है, एक चिराग वो होता है जो जलता है लेकिन हवा आती है उसको बुझा देती है, यानी इसको तो लाजमा भी हासिल नहीं है, और एक चिराग वो है जो जलता तो है लेकिन जला नहीं सकता, जैसे ही बत्ती को, चराग की बत्ती को, चराग की बत्ती जो जल रही है दूसरे चराग की बत्ती उसे टच की कि वो बुझा हुआ चराग इसको भी बुझा देता है। जैसे कोई अमरद लड़का आ गया, बगैर दाढ़ी मूछ वाला, नेक है, तहज्जुद गुजार और जिक्र तिलावत शेर से बैद भी है, लेकिन अमरद आया तो पहले तो नजरें नीचे नीचे, फिर नजरें उठाकर देखने लगा कि फैज डायरेक्ट तुझे दूंगा मैं, तो नतीजा क्या होगा? ये चराग जलाएगा क्या? इसका अपना बुझ जाएगा। और एक चराग वो है, बारीक चराग की किस्म वो भी है कि जलते हैं, खुद जलते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बुझा हुआ चराग इससे आकर अपनी बत्ती को टच करे और मस करे और मिल जाए तो क्या होगा? उसको तो जला देगा, खुद बुझ जाएगा। ये भी एक चराग की किस्म है कि उसको तो जला देगा, खुद बुझ जाएगा। और मेरे मुर्शिद ने फरमाया, एक चिराग वो होता है जो जलता भी है और जलाता भी है, अपनी बत्ती को मुंतकिल करता है। चिराग की बत्ती दूसरे बुझे हुए की आंख से टच होती है तो टच होने के बाद न सिर्फ ये कि खुद जलता भी रहता है बल्कि जलाता भी है। ये है वो चिराग। मेरे शेख और मुर्शिद ने फरमाया, हजरत से एक शख्स ने सवाल किया कि हजरत मैं ये चाहता हूं कि मेरा ईमान जो है, मेरे ईमान की रोशनी तेज से तेज तर और तेज तरीन हो जाए, बढ़ती जाए, जलता जाए चिराग, क्या तरीका है? मेरा ईमान कमाल दर्जे तक पहुंच जाए, ईमान कामिल हासिल हो जाए। तो हजरत वाला मेरे मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दान बरकातुम ने फरमाया कि ईमान को रोशन करने का तरीका वही है जो चिराग रोशन करने का है, वही तरीका है। पूछा, हजरत वो कैसे? फरमाया ऐसे कि देखो, पहली बात तो ये कि चिराग जलता नहीं है, चिराग जलता नहीं है, खुद नहीं जलता, जलवाते हैं, जलवाया जाता है। जलते हुए चिराग से करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है और एक सीना बसीना है। यानी आग घर से घर में लगती है, एक घर में आग लगे उससे दूसरे घर में चली जाती है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत की आग ये सीने से सीने में मुंतकिल होती है। तो हजरत ने फरमाया कि पहला तो यही, अपने रोशन करना चाहते हो, पहले अपने चिराग को जलाओ। और कैसे जलाओगे? किसी अल्लाह वाले की सोहबत से जलाओ, उसकी बत्ती जो जल रही है उससे टच करो अपने को, अपने दिल की बत्ती को उसके पास पेश करो। क्या मतलब? अपने को उसकी सोहबत में लेकर जाओ, बैठो और अपने दिल को नीचे कर दो, झुका दो, मिटा दो। और शेख का ये आलम हो, मेरे शेख फरमाते हैं कि हजरत ने फरमाया कि मेरे शेख शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत में मेरे शेख ने 17 बरस गुजारे, जवानी का जमाना, शेख पर फिदा और कुर्बान किया। मोबाइल की घंटी इंसान भूल सकता है, भूल सकता है कि मोबाइल बंद करना भूल जाए, मुमकिन है, बशरी तकाजा है, उससे मुमकिन है, लेकिन मोबाइल की घंटी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी शक्ल से मैच भी करती हो। ऐसा ना हो कि हमारी शक्ल सूरत बायजीद रखते हो और मोबाइल की घंटी ऐसी हो कि नमाज में बजे तो इमाम नमाज छोड़कर नाचना शुरू कर दे। मैचिंग करे, शक्ल से मैचिंग होनी चाहिए घंटी की, ऐसी घंटी ना हो कि बिल्कुल ही डांस और नाचना शुरू कर दे। सादी घंटी होनी चाहिए, सादी घंटी। और सादी घंटी का एक तरीका है, कैसे पता चले सादी घंटी कैसी है इसकी? वो तरीका ये कि आप मोबाइल की घंटी को 2 साल के बच्चे को सुनाएं। अगर बच्चा ऐसे बैठा रहे ना सीधा तो इसका मतलब घंटी सादी है, और अगर बच्चा ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर दे तो समझ जाए दाल में काला है। और अब क्या करो? चिंता करो, यानी अब फिक्र की जरूरत है, करो चिंता, तो चिंता करीबो, हाँ करीबो ना, करीबो, हाँ करीब हो और करीब हो करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे ताकि बात समझ में आए। रहा मोबाइल है, इंसान है, बशरी तकाजा है, भूल सकता है मोबाइल की घंटी बंद करना, मुमकिन है ये, लेकिन घंटी सादा हो ताकि अगर नमाज में बजे भी तो किसी को परेशानी ना हो। गोके उससे भी परेशानी होती है, खुशी और खुशू में खलल वाके होता है, और ऐसी चीज जिससे खलल वाके हो तो उसका तर्क करना ये खुशू के तकाजों में से है। लगा मोबाइल की घंटी का बंद करना ये तकाजा है, खुशू का तकाजा है ये कि मोबाइल की घंटी बंद होनी चाहिए एहतमाम से। इसको ऐसे समझे कि अगर डीएसपी के पास जा रहा हो, थानेदार के पास जा रहा हो, तो मोबाइल की घंटी को एहतमाम से बंद करेगा नहीं करेगा, ये सोच ले कि किस अल्लाह ताला के दरबार में जा रहा है, किस मौला के दरबार में जा रहा है जिनकी अजमतों का हम हक अदा नहीं कर सकते। तो मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने फरमाया कि ईमान रोशन करने का तरीका यह है क्या कि चिराग को पहले किसी चिराग से जलवाओ, लालटेन को लालटेन से की बत्ती से लगाओ, लालटेन की बत्ती को लालटेन जलते हुए लालटेन से, ऐसा ना बुझे हुए लालटेन से, शक्लें लालटेन मत देखो, सिर्फ सूरत लालटेन मत देखो, ये भी देखो ये जल रहा है कि नहीं जल रहा, इसकी रोशनी है भी कि नहीं, यानी मुनव्वर होना काफी नहीं है, मुनव्वर होना काफी नहीं है, मुनीर भी होना चाहिए। हो सकता है कोई मौलवी मुनीर साहब भी बैठे हो यहां पर, मुनव्वर होना काफी नहीं है, मुनव्वर भी हो मुनीर भी हो, जब मुनीर होगा तभी तो मुस्तनीर लोग फायदा उठाएंगे। तो चिराग रोशन हो, अब चिराग को उसके मिलाए, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे शेख ने फरमाया कि सोहबत शेख की इतनी जरूरत है, फरमाया कि मारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नस न तमा कुछ इल्ला जिल्ले पीर, नस मरता नहीं है, मरीबोना नस न मरीबोना इल्ला सोहबत मुर्शिद, शेख का पीर का साया। और फरमाया कि दामने आ नफ्स कुश, दामने आ नफ्स कुश सख्त गीर, जरा उस नफ्स को मरने वाले नफ्स को मिटाने वाले का दामन को जरा मजबूती से पकड़ना, कमजोर दामन ना हो। फिर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मसनवी पढ़ाई, मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने मसनवी पढ़ी हजरत मुआशादुल हिसाब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, और हजरत मुआशादुल हिसाब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी पढ़ी हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद मसनवी पढ़ी थी शेखुल अरब वल अजम शेख सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से, और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी पढ़ी थी मियाँ जी हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब कुतबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह से, और मियाँ जी साहब ने मसनवी पढ़ी थी हाफिज अब्दुल रज्जाक साहब जो के नाबीना थे और हाफिज मसनवी थे, वो उनसे मसनवी पढ़ी थी, और हाफिज साहब ने मसनवी पढ़ी थी खातिमे मसनवी मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह से। ये मेरे शेख की मसनवी की सनद है, और मेरे शेख की जो बुखारी शरीफ की सनद है वो भी माशाल्लाह, हजरत ने बुखारी शरीफ पढ़ी हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, जिनका हकीमुल उम्मत जिस जमाने में सरपरस्त थे दारुल उलूम देवबंद के, उस जमाने में हकीमुल उम्मत ने हजरत शाहुल साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जो कि जौनपुर के अंदर शाही मस्जिद में 16 असबाक सब ऊंचे दर्जे के आला असबाक पढ़ाया करते थे, हजरत ने इंतखाब किया हजरत फुलपुरी का दारुल उलूम देवबंद के लिए कब, जब हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नवरल्लाह मरकदऊ ढाबेल तशरीफ ले गए थे, उस वक्त हजरत ने हजरत फूलपुरी का इंतखाब किया कि आप मदरसे के लिए सदर मुदर्रिस शेखुल हदीस के लिए। फिर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हकीमुल उम्मत ने पूछा था मौलवी अब्दुल गनी क्या लोगे, क्या मत यानी क्या तनख्वाह लोगे, तो मेरे शेख फरमाते हैं कि हजरत फूलपुरी ने अर्ज किया कि हजरत चने चबाकर पढ़ा दूंगा। बस हकीमुल उम्मत ने एक आंख में आंसू आ गए और फरमाए कि आह मुझको आपसे यही उम्मीद थी। फिर बाद वजूहात की बना पर हजरत देवबंद तशरीफ नहीं ले गए, फिर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फिर हजरत तशरीफ ले गए थे सदर मुदर्रिस। मेरे शेख ने फरमाया कि हजरत फुलपुरी ने जब मसनवी पढ़ाई फिर फरमाया दामन आ नफ्स कुश, उस नस को मिटाने वाले का दामन कैसे करना, सख्त घी, जरा मजबूती से पकड़ना। फरमाए कि मजबूती की शरह फरमाए फिर हजरत ने कि मजबूती की क्या माने, फरमाए मजबूती के माने ये हैं कि जब शेख ने हलवा खिलाया या कटहल खिलाया या अनानास खिलाया या चाय पेश की, तकिया लगा दिया, हमारे शेख के अखलाक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अखलाक वाले हमारे मुर्शिद। अच्छा, जब जहाजर इतना इकराम फरमाते हैं, तकिया लगाते हैं, बिस्तर पर गर्म बिस्तर पर बिठाते हैं और चाय पेश फरमाते हैं, बहुत ही हमारे शेख के अखलाक माशाल्लाह। और जिस दिन मुरीद की बेउसूली उसकी नालायकी पर शेख ने पकड़ की और अंडे के बजाय डंडा लगाया और मिरिंडा के बजाय डंडा जब पिटाई लगाई, कहा अल्लाह वालों के अखलाक बड़े गंदे हैं, अल्लाह वालों के अखलाक ऐसे तो नहीं होते, अल्लाह वालों के अखलाक ऐसे तो नहीं होते जी। कहा जी पीर बहुत है और बांग्लादेश में तो पीरों की कमी नहीं है, ये तो पीर नहीं अपियार की मंडी है, पीर बेशक बहुत मिल जाएंगे, पीर बेशक। आह, मेरे शेख फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने क्या फरमाया, मैंने बहुत शहर घूमे, बहुत हसीनों को देखा, लेकिन मगर तू चीजें दी गई। फरमाया कि जो शेख पर फिदा होता है फिर कुछ भी हालात गुजरे, इल्ला ये कि शेख अगर हक पर है फिर शेख का दामन छोड़ना कोई वजह नहीं है, हाँ अगर मुनासबत नहीं है तो और वजह है, लेकिन मुनासबत इतनी जल्दी नहीं। एक साहब ने मेरे मुर्शिद को खत लिखा कि मेरे शेख का इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा कि हजरत अब मैंने बहुत पीरों को देखा, बहुत मुर्शिद के पास गया, किसी से मुनासबत ही नहीं होती, मैं क्या करूं। हजरत ने फरमाया अगर आपको किसी से तबाई मुनासबत नहीं होती, हजरत सुनिएगा जी मजबूत हजरत का, फरमाया कि अगर आपको किसी से तबाई मुनासबत नहीं होती तो अकली मुनासबत पैदा करो। फरमाया ये नफ्स की बदमाशी है कि मुनासबत न होने के नाम पर जिससे आपको मुनासबत है उससे भी मुनासबत नहीं दिखाता, ये नफ्स की चक्करबाजी है। फरमाया मुनासबत अकली मुनासबत पैदा करो, मुनासबत अकली होगी फिर वो तबाई से तब्दील भी हो सकती है, और तबाई के हम मुकल्लफ नहीं है, तबाई के हम मुकल्लफ नहीं है, हम अकली मुनासबत के मुकल्लफ है। अगर तबाई नहीं मुनासबत होती लेकिन इस्लाह हो रही है, ताल्लुक है, नफा हो रहा है, बस ये काफी है। फरमाया कि शेख का दामन को जरा मजबूती से पकड़े, कि अगर शेख ने कहा कोई बात सख कह दी या चाय नहीं पेश की, शेख के घर में बीमारी है कोई बात है और उस दिन उसने मुस्कुराकर बात नहीं की, तो लो जी ये क्या बात है, तो क्या ये इसलिए आया था शेख उसको सर पर बिठाए। जाए जिसे मजदूर ना जाहिद नजर आए, भाए ना जिसे रिंद वो फिर क्यों इधर आए, फरदाना जिसे बनना हो वो जाए कहीं और दीवाना जिसे बनना हो बस वो इधर आए, सौ बार बिगड़ना जिसे मंजूर हो अपना वो आए इधर और बचश्मो बसर आए। शेख इम्तिहान लेता है कभी कभी, कभी शेख जो निगाह टेढ़ी करता है जानबूझकर वो इम्तिहान लेता है इखलास पैदा करने के लिए, ताकि ये हर वक्त, क्योंकि कभी कभी हकीम जो है कड़वी दवा भी खिलाता है, देखिए ना इंजेक्शन लगाता है, नहीं हकीम साहब मीठी गोली से मेरा इलाज करना, अब उसके खून में फसाद है, दाने निकले हुए हैं और कह रहा है कि चीनी से मेरा इलाज करो, शहद से मेरा, मधु से इलाज करो, क्योंकि मैं मधुबाला पर आशिक हूं, मद भरी आंखों का आशिक हूं, तो जालिम तेरा तो मर्ज यही है, तो शेख ने तेरा ये तेरी मध को तो निकालना है, ये जो तू मध पर इतनी लंबी लंबी मध खेचे हुए है इसी को तो दूर करना है, तो वो फिर क्या करेगा, वो कड़वी दवा पिलाएगा। अब ये शेख के ऊपर है, मिटाए उसको अपने आप को, चिराग जैसे टच करता है मिटा देता है अपने को। और मेरे मुर्शिद ने फरमाया, आह मेरे शेख का मलफूज है, फरमाया कि देखो चिराग कितना कीमती हो उसमें हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी जड़े हुए हो वगैरह, सोने के चांदी का बर्तन का इस्तेमाल मना है, एक मिसाल समझा रही है, हीरे जवाहरात सोना चांदी का हो, हीरे जवाहरात चिराग में हो, बत्ती लाखों रुपए की हो, लेकिन फरमाया जलेगा कैसे, खुद जल नहीं सकता। और वो माचिस की तीली जिसकी कीमत पैसा टका भी नहीं है, एक टका की भी माचिस की तीली नहीं है, एक टके में तो बहुत सारी तीलियां मिल जाती है, लेकिन वो लाखों रुपए का चराग बगैर उस माचिस की तीली के जल नहीं सकता। लिहाजा शेख की, अगर शेख की इबादत कम हो, अगर शेख की इबादत कम हो, नफली इबादत, फराइज वाजिबा सुन्नत मौकदा का तो तर्क करने वाला, इल्ला उज़्रे शरई हो किसी का, जैसे मुसाफिर है या बीमार है, तो हो सकता है वो सुन्नतों को उस वक्त बहालत मजबूरी और उज़्र के गुंजाइश है ना भाई मौलाना साहब, तो उज़्र है। हाँ, बगैर किसी उज़्र के अगर तारीख़े सुन्नत मौकदा है तो तब तो वो बात है कि वो शेख ठीक नहीं है फिर, और उज़्र शरई है, इसलिए एक मरतबा मुलाकात में फैसला ना करें। एक मरतबा अब शेख सुन्नत सिखाता है कि जब सजदे में जाओ तो बिल्कुल सीधे उतरो, पहले घुटने रखो। अब शेख ने मसला सिखाया, खुद ही शेख को देखा कि उल्टा ऐसे झुक कर जा रहा है और घुटने के बजाय पहले हाथ रख रहा, तो क्या मतलब है, कोई शरई उज़्र है उसके साथ, कोई उज़्र है, इसलिए एक मुलाकात में फैसला ना करें। देखे जरा, क्योंकि शैतान जो है, हमारे एक पीर भाई हैं शाहीन इकबाल असर साहब, हमारे शेख के खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं, उनका शेर है कि नफ्स भी हैरान है शैतान भी सख्त मुश्किल में है, नफ्स भी हैरान है शैतान भी सख्त मुश्किल में है, वो जिसको बहकाना था वो तो शेख की महफिल में है, जिसको चक्कर में डालना था तो अल्लाह वालों के पास चला गया, कहता है ये अल्लाह वालों के पास जाएगा, शैतान कह रहा था मेरे चक्कर में नहीं आएगा, और नफ्स कहता है अब ये मेरी भी हराम लज्जतों को बंद करेगा, तो वो क्या करते हैं, पूरा जोर लगाकर शैतान चाहता है कि शेख से दूर कर दे इसको। लहजा दूर करने के लिए दो काम करता है, नंबर एक काम एतराज पैदा करता है कि देखो शेख फला मुरीद से तो इतना मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं करता। भाई बात यह है, चलो अगर किसी मुरीद का शेख से ताल्लुक खास है, खास का शेख का मुरीद से है, तो कोई वजह भी तो होगी, हो सकता है उस मुरीद का भी ताल्लुक खास हो, मुरीद का भी ताल्लुक खास हो, क्या वजह है कि शेख उस पर इतना फिदा और कुर्बान है, मोहब्बत कर रहा है, जरूर मुरीद की भी इखलास होगा, कोई चीज होगी जो उससे पोशीदा है। ज्यादा शेख अगर मुरीद से खास कुछ रब्ता और ताल्लुक है तो उसका मतलब कोई बात होगी, तो लिहाजा एतराज ना करे, बस अपने को यही समझे जो शेख ने मुझसे बर्ताव किया मैं इसी लायक था, ये एतराज डालता है कि फला ये काम किया फला, अरे हजरत को क्या पता है कि मैं असल में ये वजह थी, इस वजह से नहीं किया। आह, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि शेख के साथ तो ऐसे रहना चाहिए, ऐसे अदब हो, जैसे एक बादशाह था वो जा रहा था, साथ में उसका एक आशिक गुलाम था, रास्ते में दरिया आया, दरिया में उस बादशाह ने कहा छलांग मार दरिया में, लेकिन तेरे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। उसने कहा हुजूर क्या बात है, आपके दिमाग में कोई खलल है क्या कि दरिया में कूदे और कपड़े गीले ना हो, कुछ नहीं कहा उसने, खामोश रहा, फौरन दरिया में छलांग मार दी, बाहर निकला कपड़े गीले, बादशाह नाराज हो गया कि जालिम तुझे कहा था तेरे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, क्यों कपड़े गीले हुए, बादशाह नाराज हो गया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं अब एक तरफ अकल है और एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ अकल है एक तरफ इसको मोहब्बत है, फरमाया कि वो आशिक था, उसने हाथ जोड़कर कहा हुजूर गलती हो गई माफ कर दीजिए। आह, इसको कहते हैं मोहब्बत। रूमी फरमाते हैं आजमूदम अकल रा दूर अंदेशा, आजमूदम अकल दूर अंदेशा, अकल को बहुत आजमाया, बाद अजी दीवाना साजम खेश रहा, फिर मैं आशिक दीवाना बन गया, बस मैंने अल्लाह को पा लिया, अकल से न पा सका। फरमाते हैं आशिकम मंदर फने दीवानगी, मैं तो दीवानगी के फन पर आशिक हूँ, और सहरा मत फरहंगो फरजानगी, ये अकल से अल्लाह ताला का रास्ता तय नहीं होता, लेकिन अकल से मुराद वो अकल जो गुनाहों की नहुसत की वजह से नूर ईमान से खाली है। हाँ, वो अकल तो मतलूब है, कौन सी अकल जो नूर ईमान से भरपूर हो, पूर हो, ये तो अकल का होना ये तो कमाल है भाई। लेकिन नूर ईमान होना चाहिए और ईमान भी कामिल हो। तो शेख जो है, शेख की सोहबत, ये चराग उससे जलेगा, उसके पास बैठे। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, उल्फत के बाद रابطہ डिस्कनेक्ट न कीजिए, उल्फत के बाद रابطہ डिस्कनेक्ट न कीजिए। हर रोज मुलाकात 10 मिनट तो कीजिए, 10 मिनट की मुलाकात कीजिए, 10 मिनट मिलो भाई, शेख के पास आना जाना रखो। ये क्या बात है, चाय पीने के लिए वक्त है, सब जगह जाने के लिए वक्त है, शेख के पास जाने के लिए वक्त नहीं है। क्या बात है, हर जगह जा रहा है तो शेख के पास क्यों नहीं जाता, अपनी इस्लाह के लिए, मोहब्बत सीखने के लिए, हर काम के लिए वक्त है। तो शेख से ताल्लुक रखे। अब मेरे शेख ने फरमाया, शेख के पास रहा, शेख के पास रहा, बाजे लोग कहते हैं कि अब शेख के पास आ गए, अब हमें जो मिलना था वो मिल गया, और हमने मिलने को क्या समझा, हमने मिलने को ये समझा खिलाफत मिल गई। तो हम भी पीर शाह बन गए, अब तो हम भी, अब तो खिलाफत मिल गई, जो मिलना था मिल गया। तो भाई गोश्त लाने के बाद, मान लो कुर्बानी का गोश्त लाए, कुर्बानी की जानवर जिबा किया, गोश्त को फ्रिज में रखा, गोश्त मिल गया ना, क्या गोश्त मिलना काफी है, काफी नहीं है, गोश्त को सड़ने से बचाना ये भी जरूरी है, सड़ने से बचाना ये भी जरूरी है। तो पता चला खिलाफत सिर्फ काफी नहीं है, खिलाफत को बचाना भी है। खिलाफत को बचाने के बाद मजा तो ये है कि अल्लाह ताला की निस्बत और ताल्लुक में तरक्की भी हो। खिलाफत निस्बत का परवाना नहीं है, इसको भी याद रखना, खिलाफत निस्बत का परवाना नहीं है, उसको निस्बत का परवाना समझना ये अकलमंदी के तकाजे, अकल के तकाजे के खिलाफ है। खिलाफत निस्बत का परवाना नहीं है। यूं कह सकते हैं कि शेख के नेक गुमान की बरकत है, वो यही समझे कि शेख ने जो मेरे साथ नेक गुमान का मामला किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे शेख की बरकत से मुझे निस्बत की मुझ पर नवाजिश भी फरमा देंगे। इसको निस्बत का परवाना समझना ये मेरे दोस्तों ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये उम्मीद रख सकता है कि इंशाल्लाह ताला कभी मैं भी अपने शेख की सोहबत की बरकत से साहिबे निस्बत इंशाल्लाह हो जाऊंगा, और जो हो भी जाएगा तो भी अपने को समझेगा नहीं, ये भी अलामत में से लगा अब शेख की सोहबत से। इसलिए मेरे शेख ने फरमाया कुनु माज सादिकीन जो है, फरमाया ये कुनु अम्र है, और अम्र बनता है मुजारे से, और मुजारे में हाल और इस्तकबाल दो समाना होता है। लिहाजा ये जो अम्र है, इस अम्र के अंदर ये बात चीज है कि हालन भी शेख के पास रहे और मरते दम तक शेख के साथ रहे, इस्तिमरारन, इस्तिमरार हो उसमें, कंटिन्यूएशन हो उसके अंदर। ऐसा ना हो कि शेख के पास रहा फिर छोड़ दिया तो फिर कूनू नहीं होगा। मेरे शेख ने फरमाया जो कूनू नहीं रहता फिर वो काना हो जाता है, लिहाज से भी, और काना उसको भी बोलते हैं ना एक आंख वाला, इसलिए काना दज्जाल बोलते ना, तो ये भी काना हो जाएगा। दादा कुनू की कुनू कुनू बताता है कि हालन और इस्तकबालन शेख के साथ रहे। कैसे फरमाया, फिर शेख के सोबत की बरकत से तीन चीजें मिलेंगी इसको। नंबर एक आता है निस्बत, निस्बत मिलेगी इसको, और फरमाया निस्बत का सिर्फ मिलना काफी नहीं है बल्कि उसका बाकी रहना भी जरूरी है। लिहाजा दूसरी नेमत जो मिलेगी कुनू का, उस अब उस कुनू में तरक्की हो रही है, उस कुनू में तरक्की हो रही है, अब वो अताए निस्बत बकाए निस्बत से तब्दील हो रही है, फिर बकाए निस्बत अब भी कुनू करना है तो क्या नतीजा होगा कि वो जो बकाए निस्बत है वो इर्तिकाए निस्बत यानी निस्बत में तरक्की होती चली जाएगी। चूंकि अल्लाह ताला की जात गैर महदूद, अल्लाह ताला के कुर्ब के मकामात गैर महदूद है, समझ नहीं सकता। मारूमी फरमाते हैं बादाए अफरावा, बादाए अफरावा अफरावा व खुम व जाम मैं, अल्लाह ताला अपने कुर्ब की ऐसी निस्बत और ऐसी शराब ऐसा मजा आता फरमाते हैं जाम भर भर के, और फरमाते हैं कि बोसाए बे अंदाजा व लब नाफदीद, ऐसे चुम्मे बे अंदाज चुम्मे غیر محدود چمنے ملتے ہیں لیکن چومنے والے وہ ہونٹ دکھائی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ تو غیر محدود ہے. ترقی جس نے یہ کہا بس میں نے منزل پالی, بس فرمایا میرے شیخ نے, گویا اس نے کچھ بھی نہیں پایا. اور جس نے نعرہ لگایا حل من مزید کا, فرمایا وہ پائے گا, پاتا ہے, پائے گا اور پاتا رہے گا. حل من مزید کا نعرہ لگائے کہ اور پلا اور پلا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا عشق کا آئین, یہ آئین کا منہ کھلا ہوا ہے, پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے عشق کا. دادے کیسا عشق ہے کہ پیٹ بھرتا ہی ہے. اب وہ لالٹین بن گئی, چراغ روشن ہو گیا, پھر کیا کرتے ہیں لالٹین کو, لالٹین کو جلانے کے لیے لالٹین کی جو بتی ہوتی ہے, اب وہ بتی روشن ہو گئی, اب اس بتی کو تیز یا کم کرتے ہیں, اس بتی کو تیز یا کم کرتے ہیں. لیکن اگر بتی کم کریں روشنی کم ہوگی, اگر بتی کو زیادہ کریں اوپر کریں روشنی زیادہ ہوگی. اگر زیادہ اوپر کر دیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, روشنی زیادہ ہونے کے بجائے اب وہ بتی کالی بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی دینے لگتی ہے, جسے کھانسی ہوتی ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا اگر روشنی کم کی تو کیا مطلب کیا ہوا, سنت پر عمل نہیں کرتا یہ ظالم. اس کا چراغ کیا رہا, اس کے چراغ کی روشنی کیسے آگے بڑھے گی, پتا تو چلے گا چراغ روشن ہے, روشن کے روشنی کا پتا چل جائے گا, لیکن اس روشنی سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا. اور فرمایا اگر زیادہ کر دی یعنی سنت سے آگے بڑھ گیا, بدعت کی طرف چلا گیا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کھانسی آئے گی, دھواں اٹھے گا, قریب والے کھانسیں گے اور بتی بھی خراب ہو جائے گی, عبادت برباد ہوگی بدعت کی وجہ سے. حکیم میرے شیخ نے فرمایا, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک شخص نے کہا کہ ہماری نانی اما ہے نا اتنی عبادت گزار چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئی. ایسی چھلانگ نہیں مارنی, چھلانگ مارنی ہے دائرہ سنت کے اندر, دائرہ سنت میں رہنا ہے, سنت کے دائرے کے اندر. بھالو دائرہ سنت میں رہنا ہے, دائرہ سنت سے نہ خروج ہو نہ اخراج ہو, بچنا ہے, دائرہ سنت سے باہر نہیں جانا, سنت پر عمل کرنا ہے. اور وہ سنت سیکھے, میرے مرشد کا شعر سارے عالم میں مشہور ہے الحمدللہ, فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لہذا دارے سنت میں رہے, سنت سے آگے نہ بڑھے. اور سنت کو کیسے سیکھے, اپنے بزرگوں سے سیکھے, اپنے بزرگوں سے سیکھے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو سمجھا ہے وہی وہ شاعر ہے اور یہ ہے. یہ بھائی کیا مدرسوں میں سنت, مدرسوں میں کیا دین نہیں سکھایا جاتا, پھر کیوں اللہ والوں کے پاس جاتا ہے؟ اصل میں وہ شاعرۂ اولیاء سیکھنی ہے جو ہر زمانے میں وہ ممتاز ہے. آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھ لیں, ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کا ایک خاص طبقہ ہے جو آپ کو ممتاز نظر آئے گا. ہمیں اس طبقے سے, یہ وہ طبقہ ہے جو شاعرۂ اولیاء ہے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے, آہ کو نسبت ہے کچھ شاہ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. لہذا وہ شاعرۂ اولیاء سیکھنی ہے, اپنے بزرگوں کا طریقہ سیکھنا ہے, اپنے کو بزرگوں کے طریقے پر ڈالنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں نا ایک ایک کام میں کتنے جائز کام ہوتے ہیں, کتنے جائز کام کرتے بتائیے. باب الکراہیہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں فقہ کی کتابوں کے اندر؟ کیا وہ سب کام حرام ہے کیا؟ وہ بالکل حرام نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے, لیکن کیوں پڑھایا جاتا ہے پتا یہ چلا, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے منصب کے اور انسان کے مزاج کے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدا اور مقتدا بنایا ہے اس منصب کے خلاف ہے وہ, حالانکہ وہ حرام نہیں ہے. باب الکراہیہ کی چیز ہے, وہ حرام نہیں ہے, لیکن کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ سمجھایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو مقتدا کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے اس منصب کے لیے مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے بزرگوں کو جو خاص چیز دی ہے, جو ہمارے شیخ کو خاص درد دیا ہے, جو چیز ہے وہ آپ کو امتیاز نظر آئے گا. اور وہ طریقہ سیکھنا ہے, वो दर्द दिल लेना है, वो चीज सीखने की है मेरे दोस्त। लादा सुन्नत का रास्ता हो, उससे क्या होगा, बत्ती रोशन होगी, खुद भी रोशनी, दूसरों को भी फायदा मिलेगा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, दिल में लगा के उनकी लौ, कर दे जहां में नशरे ज़ौ, दिल में लगा के उनकी लौ, कर दे जहां में नशरे ज़ौ, रोशनी शमाए तो जल रही है सौ, बज़्मे मगर रोशनी नहीं। यानी क्या बात है, बात यह है कि चिराग मौजूद है लेकिन किसी अल्लाह वाले से जलाया नहीं है। इल्म हासिल कर लिया ना, मसला पता चल गया, लेकिन मसले पर अमल करने के लिए फैन चाहिए कि नहीं चाहिए, फैन की जरूरत है। वो फैन सोबत अहलुल्लाह से मिलती है मेरे दोस्त। सुना किसको नहीं पता, मसला भी बताता है टीवी देखना हराम है, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो नमाज पढ़ के मुख्तदी के कान में कहता है, वो गैर तरबियत याफ्ता गैर सोबत याफ्ता, के अभी मैं भी आने वाला हूं मैच देखने के लिए। वो भी जाकर अपने घर में बीवी से कहता है, इमाम साहब आ रहे हैं, जरा कबाब शबाब मछली बना लेना, घर में बरकत हो जाएगी। पर्दा भी करता है, हाँ वो रिश्तेदार जो खूबसूरत नहीं है उनसे पर्दा, और जो जरा थोड़ी सी मधुबाला है, सुंदर है सुंदर, कि तो मोबाइल में बैलेंस भी डाला जाता है, बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। क्या है वो, किसी से पर्दा है, किसी से पर्दा नहीं। अफतू मीनू ना विवाह मिल किताब व तकफुरू ना विवाह, नफ्स है, गुस्से को और अपने नफ्स की चक्करबाजियों को वो दीन का नाम देता है। इसलिए जरूरत है सोहबत की मेरे दोस्तों, चराग जलेगा फायदा होगा। एक साहब, एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि मेरा जी चाहता है मैं किसी से बैत हो जाऊं, सिलसिले में दाखिल हो जाऊं, लेकिन मैं दीन का काम कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि मेरा दीन का काम बंद हो जाए। मैंने कहा अच्छा, जिससे आप हाथ पर बैत होंगे आपको उससे यही नेक गुमान होगा ना, ये अल्लाह वाला है। कह रहे हाँ जी। मैंने कहा अगर अल्लाह वाला है तो आपके दीन के काम को मना करेगा, ये अल्लाह वाला है जो दीन के काम से रोके। हाँ मना तो नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा, अगर किसी काम से मना कर रहा है और वो अल्लाह वाला भी है तो इसका मतलब क्या है, वो काम दीन का काम नहीं है। मदरसतुल बनात खोलना तो दीन का काम है, मदरसतुल बनात खोलना तो दीन का काम है, लेकिन मदरसतुल बनात के अंदर बनात का मुआयना करना, ये कौन सा दीन का काम है। निगरानी हो रही है, निगरानी। मोहतमिम साहब खुद डंडा लेकर वो निगरानी के लिए जा रहे हैं कि बच्चियां सही सोई है कि नहीं सोई। ये दीन का काम है, मदरसतुल बनात तो बेशक दीन का काम है, लेकिन ये निगरानी कौन सी दीन है। तो बस इस एक मिसाल ये काफी है, बस इसी पर समझ ले, क्योंकि वक्त मुख्तसर है ना, बात को तो समेटने की फिक्र करनी है। तो लादा इसको देख ले, ऐसे नफ्स चक्कर में डाल देता है। जो जो बच्चा जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, जो अमृत मिसले अमरूद के है, उसको करीब बिठाया, टॉफी भी खिला रहे हैं, गोद में भी बिठा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, क्यों, बच्चा बहुत लायक है, बड़े होकर दीन का काम करेगा। और वो बच्चा जो कमजोर है, खूबसूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो उसको तो गालियां क्या, जूते भी मारे जाते। डंडे भी मारे जा रहे हैं और उसको कह रहे, नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं कह रहे हम, तू तो मेरा प्यारा है। तो ये क्या है। इसलिए मेरे शेख ने फरमाया, अगर उस्ताद है, शेख है, किसी एक मुरीद के लिए खास दुआ कर रहा है, खूबसूरत भी है, अमरद भी है, खास दुआ उसके लिए है, बाकी किसी के लिए दुआ नहीं, ये क्या चक्कर है भाई। उस्ताद वो है जो सबके लिए दुआ करे, शेख वो है जो तमाम मुरीदीन के लिए दुआ करे। ये क्या नफ्स है कि उसके लिए, फला के लिए, फला के लिए नहीं। चंदा लेने गया शेख साहब के पास, वहां टीवी चल रहा है, शेख साहब के पास चंदा लेने का टीवी चल रहा है। अब उन्होंने कहा चंदा अगर मैंने मना किया तो ये मुझे टका देने के बजाय टका सा जवाब देगा।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकअल्लाह। आपने खुद ही ऐलान चुके फरमाया था ना, आपने खुद ही ऐलान फरमाया था, तो इस वजह से मैंने
ठीक है तो वो टका सा जवाब देगा। तो सुन्नत को देखें, सुन्नत पर अमल करें, उससे रोशनी क्या होगा, फायदा मिलेगा। अच्छा, अब उस बत्ती को जलाने के लिए तेल की भी जरूरत है, उसको तेल भी चाहिए, बगैर तेल के तो नहीं चलेगी ना। बस मेरे शेख ने फरमाया उस तेल को चलाने के लिए, उस तेल डालने के लिए अपनी हराम ख्वाहिशात का खून करो। नहीं फरमाया नहीं, उस तेल के लिए क्या करो, फरमाया कुछ जिक्र भी करो। ये जिक्र से दिल में तेल आएगा, शेख की सोहबत है, लेकिन जिक्र नहीं करता नफा नहीं होगा। लिहाजा सोहबत शेख के साथ साथ जिक्रुल्लाह का भी एहतमाम करें, शेख के सोहबत के साथ जिक्र का भी एहतमाम करें। अगर कोई पढ़ाने में मशगूली ज्यादा है या बीमारी की वजह है तो अपने शेख को लिखे कि हजरत मैं ऐसा ऐसा मेरे हालात होते हैं, इतना जिक्र नहीं कर सकता, ये फला है, कोई मुलाजमत की वजह से ऐसा है, तो हालात लिखे शेख को, शेख उस हिसाब से उसके जिक्र में कमी कर देगा, हो गया ना। अब वो क्या, वो तेल उसका काम देगा, जिक्रुल्लाह ये तेल का काम देगा। अच्छा, अब चिराग जलने के बाद भी शेख की जरूरत है, वो क्यों, क्योंकि वो एक बटन लगा होता है, उससे बत्ती ऊपर नीचे होती है, तो शेख कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करेगा, घुमाएगा उसको, इसलिए मरते दम तक जरूरत है उसकी। अब आखिरी चीज फरमाया मेरे शेख ने, फरमाया जलते जलते कभी बत्ती पर गुल आ जाता है, काली हो जाती है वो, तब क्या करते हैं, फरमाया अब उसको क्या करो, फरमाया कि उसका नतीजा क्या होगा कि आप लाख शेख ऊपर करना चाहेगा, वो मुरीद ऊपर ही नहीं होगा। शेख कहेगा अजीब बात है, क्या क्या मसला है, क्या है, तो पता चलेगा दाल में काला है, क्या मतलब, मुरीद छुप छुप कर गुनाह करता है, बदनजरी करता है, दिल में गंदे ख्यालात पकाता है, या अपनी दाढ़ी को तरोड़ मरोड़ कर छुपाता है, काटता है चुपके चुपके, शलवार टखनों से नीचे है कि शेख के पास आया शलवार ऊपर कर ली, मस्जिद में गया शलवार ऊपर कर ली, शेख के पास में गया शलवार फिर नीचे कर ली, टखने छुप रहे हैं उसके, भाभी से पर्दा नहीं करता, शेख को बताया नहीं कि मैं भाभी से पर्दा नहीं करता, तो नतीजा क्या होगा कि वो जो फरमाया कि गुनाह से बचने में जो तकलीफ है उसको बर्दाश्त करो, कैसे कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला इस गुनाह के तकाजे को अल्लाह ताला के हुक्म की तलवार से काटो, उस कैंची से काटो, तो क्या होगा, फरमाया कि वो जो तुम अपनी हराम ख्वाहिशात का सर कलम करोगे उसका नतीजा ये होगा कि चराग की जो रोशनी है वो तेज हो जाएगी। फरमाया ये है असल चीज कि इसको काटना बहुत जरूरी है, वरना इबादत करने वाले खूब है ना, कमी नहीं है, इबादत करने वाले बहुत है। फरमाया कि वो गुनाह से बचने का इस चीज की फिक्र पैदा करे। हर साल हज उमरा मुबारक है, हर साल हज उमरा ये मुबारक है, तबलीगी जमात में जाना मुबारक है, हर साल चिल्ला देना ये मुबारक है, इज्तमा में जाना ये मुबारक है, मदरसे में पढ़ना हिफ्ज करना कराना ये मुबारक है, लेकिन गुनाह से बचना ये निहायत जरूरी है मेरे दोस्त। शेख के पास जाता है, शेख के पैर दबा रहा है, गुनाह नहीं छोड़ता, तबलीग में जा रहा है और चिल्ले पे चिल्ला लगा रहा है, गुनाह नहीं छोड़ता, हर साल हज उमरा कर रहा है, जब देखो सर मुंडा हुआ है, हाजी साहब सब कह रहे हैं हाजी साहब, और हाजी साहब के काम पाजी साहब वाले, मेरे दोस्तों क्या होगा। फरमाया गुनाह से बचने का इंतजाम करे, ये तकवा शेख से सीखना, यही तकवा शेख से सीखना, वो तकवा सीखे नतीजा क्या होगा, चराग रोशन होगा, फिर इस चराग का ये आलम होगा, इसका ये आलम होगा कि जहां बैठ जाते हम तेरा फसाना छेड़ देते, कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते, फिरता हूँ दिल में यार को मेहमा किए हुए, फिरता हूँ दिल में यार को मेहमा किए हुए, रुए जमी को कूचाए जाना किए हुए, सारे आलम में जाऊंगा अल्लाह ताला के झंडे को बुलंद करके रखेगा, फिर मजाल नहीं है। शेख की सोहबत की बरकत से जब इसका लालटेन रोशन होगा, शेख की सोहबत की बरकत से, शेख की तालीमात पर अमल करके जब इसका लालटेन रोशन होगा, फिर मेरे दोस्तों बादशाहत का आलम, वजारत का आलम, सदारत का आलम, माल दौलत का आलम, शामी कबाब बिरयानी का आलम, मांस भात का आलम, और अंगूर को रस और मिठास का आलम, और हसीनों का आलम, नंगी फिल्मों का आलम, बेपर्दा औरतों का आलम, कोई आलम इसको अल्लाह ताला से जुदा नहीं कर सकेगा। सारे आलम में अल्लाह ताला का आलम बुलंद किए रहेगा, अपने दिल को तोड़ देगा लेकिन अल्लाह ताला के कानून मोहब्बत को नहीं तोड़ेगा। यह है मेरे दोस्तों। लादा फरमाया कि बस इस पर अमल करो तो क्या होगा, तुम्हारा ईमान रोशन होगा, रोशन से रोशन तर और फिर रोशन तरीन हो जाएगा, फिर तुम नई रोशनी के मोहताज नहीं रहोगे, फिर तुम नई रोशनी के मोहताज नहीं रहोगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।